नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। आयोग ने सिद्धनाथ गुप्ता को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक, अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस आयुक्त, एन रमेश बाबू को सुधार सेवा मामलों के महानिदेशक और अजय मुकुंद रानाडे को कानून व्यवस्था के अपर महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है। बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। 26 सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के चुनाव के लिए पिछले महीने अधिसूचना जारी की थी। असम, केरलम और पुदुच्चेरी विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन 23 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं और नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च है और मतदान 9 अप्रैल को होगा। लोकसभा में वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रण में अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई है तथा रेलवे नेटवर्क का भी विस्तार किया जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि 2013-14 में रेलवे का बजट सिर्फ 63,000 करोड़ रूपये था, जो अब बढ़कर 2,78,000 करोड़ रूपये हो गया है। कांग्रेस के तारिक अनवर ने आरोप लगाया कि सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। सरकार स्टैंड अप इंडिया योजना के नए संस्करण का शुभारंभ करेगी, ताकि देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को अधिक लाभ पहुंच सके। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि अप्रैल 2016 में शुरू हुई स्टैंड अप इंडिया योजना पिछले वर्ष मार्च में समाप्त हो गई।
जब प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप योजनाओं की शुरुआत की थी तो एक नया विचार था, पर यह महसूस किया गया कि केवल शहरी क्षेत्रों या कुछ ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है और इसमें वास्तविक रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाएं शामिल नहीं हो पा रही हैं। इसलिए नया उद्यम शुरू करने के लिए स्टैंडअप इंडिया योजना बैंक की हर शाखा के माध्यम से आरम्भ की गयी और इससे वास्तव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को लाभ हुआ है।
राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने देश में कथित एलपीजी संकट को लेकर कांग्रेस पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा कि इस संकट में भारत की कोई भूमिका नहीं है।
मुझे दुख है कि हमारे विपक्ष, विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। यह विपत्ति कोई भारत के कारण नहीं आई है, इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। इस क्राइसिस के बारे में हरदीप पुरी ने पूरी बातचीत कही है और हाउस में कहा है।
श्री नड्डा ने आरोप लगाया कि एक कांग्रेस नेता को एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी करते हुए पकड़ा गया है और उनके नेता जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले शून्यकाल के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में एलपीजी का मुद्दा उठाया और सरकार पर संकट से निपटने के लिए आवश्यक कदम न उठाने का आरोप लगाया। ओडिशा में कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आईसीयू में आज सुबह आग लगने से 10 मरीजों की मौत हो गई। मरीजों को बचाने में अस्पताल के लगभग 11 कर्मचारी भी झुलस गए। आग आज सुबह करीब 3 बजे ट्रॉमा केयर विभाग की पहली मंजिल पर लगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में आग लगने की वजह संभवतः शॉर्ट सर्किट है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को सख्त सलाह दी है कि वे तेहरान स्थित भारतीय दूतावास से पूर्व और स्पष्ट समन्वय के बिना आगे की यात्रा के लिए ईरान की किसी भी सीमा को पार करने का प्रयास न करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।